नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन दोबारा स्थगित हुआ, लेकिन 2 बजे के बाद सदन का कार्य सुचारू रूप से चला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय बजट पर शुरू हुई चर्चा में भाग लेकर अपने अपने विचार रखे। बजट पेश होने के बाद से ही इस महीने की 2 तारीख से विपक्षी सांसदों के लोकसभा में शोरगुल और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। पिछले सप्ताह लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों को उनके अनुचित व्यवहार के कारण शेष बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया था। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। कल कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी खर्च में कमी आई है और कर संग्रह स्थिर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और असमानता को नजरअंदाज किया गया है। श्री थरूर ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित धनराशि के कम उपयोग का मुद्दा भी उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इससे पहले लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय में महासचिव को सौंपा। लोकसभा सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच जाना शर्मनाक कृत्य है।
हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और बैंकों के साथ मिलकर एक सुरक्षित और समन्वित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों से 2 कदम आगे रहना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने और न्यायालय के आदेश के बाद 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आज औषधीय पौधों पर चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती और विपणन की चुनौतियों पर चर्चा करना है। सम्मेलन में देशभर के विशेषज्ञ, किसान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसद के चुनाव के लिए प्रचार कल सुबह 7:30 बजे समाप्त हो गया। 12 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और हिंसा बढ़ रही है। चुनाव के लिए बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन उपायों के बावजूद राजनीतिक हिंसा और पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं। मानवाधिकार समूह NO40 केंद्र ने जनवरी के अंत से राजनीतिक झड़पों में 6 मौतों और लगभग 900 घायलों की जानकारी दी है। ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने कोलंबो में अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से अहमदाबाद में सुबह 11 बजे होगा। वहीं कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।